SBS हिंदी के सुनने वालों को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच भारत ने रविवार को कोरोना टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा किया। इस दौरान 156.76 करोड़ टीके लगाए गए। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है।
टुडे बीइंग वन ईयर ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, द लार्जेस्ट एवर वैक्सीनेशन ड्राइव इन द वर्ल्ड विद मोर देन 156 करोड़ डोजेस दैट हैव बीन गिवन, आई थिंक इट इज अ ग्रेट सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन इन द कंट्री। इट इज अ ग्रेट डे फॉर द साइंटिस्ट्स ऑफ द कम्युनिटी, फॉर डॉक्टर्स, फॉर ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, दैट वी इन इंडिया did not have to ask any country for a vaccine. We were able to supply to more than 100 countries of the world in line with our philosophy of world citizenship or Vasudev Kutumbakam.
इस अवसर पर स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 271,202 मामले होने के साथ देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15 लाख पार हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना के मामलों में शनिवार को आई गिरावट से कुछ राहत भी है। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने चुनावी रैलियों और सभाओं पर लगी रोक को 15 जनवरी से बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया है। यह दीगर बात है कि कोई भी राजनीतिक दल इन पाबंदियों का सही से पालन करता नज़र नहीं आ रहा, और आए भी तो कैसे जब सभी तरह के त्योहारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में माघ मेला हो या असम का बिहू या फिर तमिलनाडु का जलीकट्टू। कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां पूरी तेजी पर हैं। कई मंत्रियों और विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है। योगी सरकार में मंत्री रहे कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के स्वागत समारोह के दौरान पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा बयान दिया।
एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को, अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे।
इसके साथ ही श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की खबर पर यह कहते हुए तंज किया कि दिल्ली वालों ने पहले ही उनकी गोरखपुर विदाई कर दी है।
और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आ पाए।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के बागी मंत्रियों और विधायकों पर उठ रहे सवालों का जवाब कुछ इस अंदाज में दिया।
सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल, और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में। उनका दूसरा MLA अब्दुल आजम वो बेल पर है, एक जेल में एक बेल पर। सूची देखेंगे तो शुरुआत जेल वाले से होती है और अंत इनकी सूची का होगा तो बेल वाले पर होगा। ये जेल बेल का खेल, ये समाजवादी पार्टी का असली खेल।
समाजवादी पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की प्रथम सूची को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाने पर लिया।
समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है।
इसके विपरीत समाजवादी पार्टी में शामिल होते ही श्री चौहान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे।
जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे।
हालांकि उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों की सूची में 40% महिलाओं और युवाओं को टिकट देकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वाहवाही तो बटोरी है, लेकिन अधिकतर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि असली लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में ही है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी अब उत्तर प्रदेश छोड़ पंजाब, गोवा और उत्तराखंड पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और उत्तराखंड की तरह गोवा में भी घोषणाओं की झड़ी लगा दी।
हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। 1000 rupees टू एवरी वुमन अबव 18 years of age। पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने, सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वॉन्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश।
हरिद्वार में कथित धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरती भाषण देने वाले यति नरसिंहानंद को उत्तराखंड पुलिस ने आखिरकार हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार नरसिंहानंद की गिरफ्तारी एक अन्य मामले में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के आधार पर की गई। नफरती भाषण के लिए उत्तराखंड पुलिस ने अभी तक नरसिंहानंद को केवल नोटिस ही जारी किया है। पुलिस का कहना है कि नफरती भाषण मामले में भी नरसिंहानंद को रिमांड पर लिया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया जारी है। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को एक बड़ा झटका देते हुए विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से अलविदा कह दिया है। विराट ने सोशल मीडिया पर एक पत्र लिखकर अपना फैसला सुनाया, जिसे पढ़ पूरा क्रिकेट जगत हतप्रभ रह गया। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में मिली हार के बावजूद कोहली अब तक के सबसे सफल टेस्ट कप्तान माने जाते हैं। कोहली के नेतृत्व में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले, जिनमें से 40 में उसे जीत मिली। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल में सेन ने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो कियान यू को सीधे सेटों में 24-22 और 21-17 से शिकस्त दी। महिला एकल वर्ग में भारत को निराशा का सामना करना पड़ा। सर्वोच्च वरीयता होने के बावजूद पीवी सिंधु सेमीफाइनल में छठी वरीयता प्राप्त थाईलैंड की सुपानिदा केट थोंग से 3 सेटों में 14-21, 21-13, 10-21 से हार गईं। लेकिन पुरुष डबल्स वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज ने इंडोनेशिया की 3 बार की विश्व विजेता जोड़ी मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेथियावन को सीधे मुकाबले में 21-16, 26-24 से हराकर भारत की धाक जमाई। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS की हिंदी सेवा की ओर से आप सबको मनन कुमार का पुनः नमस्कार।